ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्री श्रीमान परम पूज्य श्रील भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेत श्रुता भक्त वृंद की लीलाक्षित्र वृंदावन धाम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। तो आइए सप्तम स्कंद श्रीमद भागवतम के नौवा अध्याय श्लोक नंबर 44 प्रायेण देव मुनयो सौ विमुक्ति कामा प्रायेण देव मुनय सो विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठः नैतन्न विहाय कृपणान् विमोक्षयेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्वे नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्वे प्रायेण देव मुनय सो विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्धनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान्ति विमुक्षयेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपस्वे
number
नमस्ते गुरु देवाय सर्व सिद्धि प्रदायने सर्व मंगल रूपाय सर्वानंद विधायने ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्ते नमस्ते कृपापूर्णदृष्टे नमस्ते नमस्ते महानंद धात्री नमो नमो पूर्ण रक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभु पाही माम दक्ष दक्ष भक्ति सिद्धांत शिष्याय भक्ति वेदांत नामिने प्रसन्नाय प्रसन्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः ओम परम गुरुभ्ये नमः धैर्य सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचीनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वासु दुस्त्यजसुरे स्पितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्जवसता धर्मिष्ठ आर्जवसता तराजरण्यम् मायामृगं दयिते स्फीतमन्नुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் தத்தோ ஜயமுதீரை முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் க்ருபா த்வமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால நரிகேண சமாகாரா த்ருஷ்யந்தே புவிஷா ஜனஹ அந்யரேவ பதரிகாசம. ஏ ஜோ சம்ஸ்கிருத் சப்த மே ஹம் லோக நே ஸ்லோக பாட் கியா. யே ஸ்லோக சோகோ கா நிவாரண கர்னே மே சமர்த் ஹே. யதி கோய் வ்யக்தி ஸ்ரீமத் பாகவத் கே அர்த்த பூர்ண ஸ்லோக நஹீ அர்த்த ஸ்லோக கே ஹி பாட் கரே உஸ் ஜீவ கா உஸ் வ்யக்தி கா ஜோ சோக ஹே துக் ஹே வோ நிவாரண ஹோ சக்தா ஹே ஹோ ஜாதா ஹே கிந்து விஸ்வாஸ் கே சாத் கர்னா படேகா. விஸ்வாஸே மிலை வஸ்து தர்க்கே பஹுதூர். த கிரேட் இன்டர்நேஷனல் போயட் ரவீந்திரநாத் டேகோர் நே ஈ கஹா பஹுத் அச்சி பாத் ஹே. பகவத் பக்தி மே ஆகே படனே கே லியே யதி சங்கா உத்பன்ன ஹோ ஜாயே குருஜி நே ஜோ மந்திர முஜே பிரதான் கியா ஹே கோய் காம் தோ நஹீ கர்தா. யே சங்கா ஹோ கயா நா மந்திர மே தோ சந்திக்தோ ஹீ ஹதோ மந்திர. மந்திர கி ஊபர் குரு பிரதத்த மந்திர கி ஊபர் யதி ஹமாரா சங்கா ஹோ ஜாய தோ மந்திர ஃபலவதி நஹீ ஹோதா. இஸ்லியே ஆஸ்ரய லேனே வாலே குரு கே சரண மே ஆஸ்ரய லேனே வாலே சிஷ்யோ கா கர்த்தவ்ய ஹே குரு கி வாக்ய கோ ஓ பத்தர் கே ஊபர் லிகி ஹுயி வாக்ய கே சமான் பூர்ண விஸ்வாஸ் கே சாத் உஸ்கோ ஸ்வீகார் கரே தோ ஃபிர் மந்திர ஃபலவதி பன்தா ஹே. தோ ஆஜ் ஹமாரே जगदानंद पंडित और जीव गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि है। थोड़े बहुत उनके ऊपर चर्चा करेंगे, भक्त की जीवन है और उसके साथ भागवत को लेके चलेंगे। तो नारिकेल समाकारा तृष्यन्ते भुविषा जनः, ऐसा क्यों कहा जी? ये जो श्लोक है ये देवनागरी भाषा में लिखी गई है, तो ये देवनागरी भाषा बड़ा विचित्र है। इसके एक शब्द में पांच अर्थ होते हैं, और कौन सी सेंटेंस में कौन सी शब्द प्रयोग है आपको उसकी ट्रांसलेशन ठीक से करना पड़ेगा। एक शब्द है हरि, जो पापों का हरण करते हैं वो हरि है। हरि मतलब है साधारण रूप से भक्त लोग ही समझते भगवान है। सिंह मृगेंद्र पंचास्य केसरी हरि, ये नाम किसका है? ना शेर का है। तो अगर हरि के जगह पर जहां पर शेर उसकी अर्थ होना चाहिए हम हरि को ले लें, और जहां पर शेर होना चाहिए उस जगह पर हम भगवान को ले लें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विष्णुपदी विष्णु पद ईकार भेद शब्द, ये विष्णु पद और विष्णुपद में अंतर क्या है? ना एक ई मात्रा का। अगर ये ई मात्रा उड़ जाए तो विष्णु पद किसे कहते हैं? आकाश को। धरणी पाद, भगवान ने वामन रूप में धरणी को एक पैर में नाप लिया और एक पैर आकाश को दे दिया, आकाश को नाप लिया। और विष्णुपदी स्त्रीलिंगवाचक, विष्णुपदी अगर किसने कहा उसका अर्थ हुआ गंगा नदी। कितना अंतर आ गया। इसलिए जब श्लोकों का हम पाठ करें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखे जे अर्थ का अनर्थ ना बने। श्रीमद् भागवत में कथा आता है उद्देश्य था किसी और को मारना, किंतु एक मात्रा की उच्चारण में गलती होने से दूसरा व्यक्ति को मरना पड़ा, तो ये अंतर है। तो नारिकेल समाकर है, ये जितने ही भाषा है ये सब बद्री का सम है। बद्री फल, बद्रीनाथ को क्यों बद्रीनाथ नाम पड़ा? क्योंकि बद्री का जो पेड़ है बहुत था और वो फल से बड़ा फेमस था वो जगह, इसलिए बद्रीनाथ, जो बद्री वन में जब ठाकुर जी का निवास हो गया उसको बद्रीनाथ कहलाए। सो बद्री फल का ऊपरी भाग जो है वो बड़ा सॉफ्ट है, और अंदर जाओ तो क्या होता है? एक हार्ड सीड निकलता है, दांत टूट सकता है। अगर हम उसको जोर दे के चुबा दे दांत टूट सकता है। किंतु ये संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है नारिकेल समाकार, जैसे नारियल है, ये नारियल में ऊपरी भाग में एक कवर है, उसके बाद और एक हार्ड चीज है जिसको हम ओरिजिनली नारियल कहते हैं, और उसको हम तोड़े पहले तो उसकी ऊपरी भाग को निकाले, कितना कठिन है निकालना, और उसके बाद हम उसको तोड़े, तोड़ने के बाद देखिए क्या मिलता है, तृष्यन्ति। हम खा भी सकते हैं नारियल को, और नारियल की पानी भी बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है, उसे हम पी भी सकते हैं, तो दोनों चीज कर देते हैं ना। ऐसा ही इन श्लोकों को यदि आप ठीक तन्मय तन मन धन से लगा करके एकदम एकाग्र चित्त हो करके इसको पढ़ो, हमारे ऋषि महर्षि इतने एडवांस थे
जब इन श्लोकों को लिखते थे क्या किया नहीं लिखा, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो शास्त्रों को आप पढ़ो, कैसे इन्होंने लिखा इसको। और जो हमारे शुद्ध भक्त हैं, हमारे आचार्य गण हैं, जैसे कि ये जगदानंद पंडित और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो लीलाओं को दर्शन करते थे और उसको वर्णन करते हैं। कितना एडवांस हुए होंगे आप बताओ। इसलिए श्लोकों को पाठ करो। कैसे? न काकराबीव कध्याई, जैसे कौवा चिल्लाता है का का चित्कार करके सबको जगाता है। और विद्यार्थी जब इन श्लोकों को खाली मन मन में पढ़ेगा, ये कभी टिकेगा नहीं मन में। स्वर्ण अक्षर में लिख लो ये बात को। जब आप इसको उच्चारण करके पढ़ोगे, स्क स्ख दग उद्गार कुझटका, इन्हीं शब्दों में ये मेमोरी के अंदर भरेगा और जीवन भर के लिए ये कभी खोएगा नहीं। इसलिए हाँ, तृष्यन्ति भूमिषा जनः, इन श्लोकों के अंदर पानी भी है और क्षुधा निवारण करने के लिए नारियल भी आप खा भी सकते हो और पी भी सकते हो। किंतु पहली जो हार्डशिप है उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन पांच गुण से परिपूर्ण है। काकरा भी एक हुआ, कौवा जैसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, बकोध्यायी, ये बगुला की जो ध्यान है, ठाकुर जी के ध्यान के साथ इसके कोई कनेक्शन नहीं है। लेट मी मेक वेरी क्लियर टू यू डिवोटीज, क्योंकि ये स्वार्थपूर्ण ध्यान है। ये ध्यान स्वार्थपूर्ण है। मछली को पकड़ने के लिए बगुला ध्यान देखता है, एक पग में बैठ करके एकदम दिखता है कि जाते ही पकड़ लेता है। पर ठाकुर जी के ध्यान कामना रहित होना चाहिए, इसलिए ये ध्यान नहीं। अब विद्यार्थी क्या चाहता है? विद्या को अध्ययन करो, अच्छा डिग्री लूं, यही तो विद्यार्थी का लक्ष्य है। तभी वो एकाग्र, जैसे बगुला ध्यान लगा के बैठा रहता है, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा? ना मेमोरी रहेगा, नहीं तो लापरवाही से सुना हुआ पढ़ा हुआ चीज खो जाता है, वो टिकता नहीं है। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक काकरा भी वक्त ध्यायी श्वान निद्रा तथे बच। और सोना कैसे है? ना जैसे श्वान। श्वान शब्द का अर्थ यहां है कुत्ता, वो बहुत उसका जो निद्रा है वो बहुत क्षीण निद्रा है, बहुत शार्प है, थोड़ा सा आवाज हो तो वो जग जाता है। ऐसा कैसे संभव है जब विद्यार्थी अपने समय में जगे? खाद्य को कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। खाद्य के ऊपर कंट्रोल नहीं है, निद्रा गाढ़ होगा। निद्रा गाढ़ हुआ फिर शरीर तो स्पेशली जब हमारे भक्त लोग 3:30 बजे, कोई कोई तो पुजारी लोग तो 2:30 बजे रात को जगना पड़ता है, जब कुछ करते हैं, गायत्री इत्यादि जपते हैं, फिर ठाकुर जी को जाते हैं, पर कितना हार्डशिप में हो जाते हैं। मेरे भक्तों से मैं ये निवेदन करूंगा, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, कभी सेंटीमेंट में ड्राइविंग मत करना। हम मंगलारती है, क्या होगा, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। देखो ये गलत फहमी है, सारा दुनिया घुमाया, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। जब आप ठाकुर जी की बात नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपके? क्यों? क्यों? ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी आपकी तभी रक्षा करेंगे जब आप ठाकुर जी की रक्षा करोगे। ठाकुर जी क्या कहते हैं उसको सुनोगे। इवन इन भगवत गीता ने कहा 6 घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटा अगर कोई नाश हुए आंखें तो झुकेगा, ट्रैफिक लाइट में आओगे आंखें ऐसे ऐसे देखते रहोगे, ट्रैफिक कब खुले में जाओगे तब तक कब सो गए आपको पता ही नहीं है। इसलिए ड्राइव करने वाले व्यक्ति को निद्रा ठीक से होना चाहिए, शरीर कहीं झुके नहीं, क्योंकि आप सभी के रक्षक हो उस समय में। आपके पीछे जितने व्यक्ति बैठे हैं उनका लाइफ आपके हाथ में है, और मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, आप लोग सब जानते हो। इसलिए निद्रा भी शरीर की एक इंपॉर्टेंट भाग है ब्रेन के लिए। जो लोग ठीक से नहीं सोते उनको देखना ब्रेन फंक्शन ठीक नहीं होता, इसलिए बात का ध्यान रखें। प्रभु आज मुझे ड्राइव करना है, पर यह शब्द का अर्थ नहीं मंगल आरती गुरु पूजा जब कुछ नहीं हम सोते रहे आज मुझे ड्राइव करना है ना, आपको आपको मैनेज करना पड़ेगा उसी प्रकार। ये एक बात है। दूसरी बात है जे मैंने कहा जो शब्द हम पढ़े वो दोनों चीज हमें देता है, वो है हमारा शास्त्र। पेट भी भर जाता है और तृषा भी टूट जाती है, तृषा भी। श्रोता अगर एकदम उत्तम श्रेणी के हो तो उसे भूख नहीं लगती ना प्यास लगता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, वो क्षुधा भी निवारण कर देता है और प्यास भी निवारण कर देता है। चलिए हम थोड़ा रास्ता से अलग हो गए, अब आइए श्रीमद् भागवत के ऊपर और हमारे दोनों भक्तों की तिरोभाव तिथि के ऊपर। भक्त का मृत्यु नहीं होती। भगवान गीता में भी कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात अपरिहार्यार्थे नत्तं सचितु महर्षि। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, ये संसार का नियम है, मर संसारे। जो जन्मेगा उसको जाना पड़ेगा। मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले हे मरोई, ये जगन्नाथ दास भागवत की वाणी है। क्या है? न मर्त्य मंडल में शरीर को धारण करके कोई अमर नहीं बना आज तक, मरना निश्चित है, मरना पड़ेगा। किंतु कौन भक्त का मृत्यु नहीं होता? ना चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन जौवनम, चला चलो इदं सर्वे कीर्तिरिजस्य स जीवति, वो अमर गाथा में लिखा जाता है। बोले किसका? ना जो भक्त ने कीर्ति रख गया संसार के लिए। एक नाम अगर हम ले, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, हमारे संस्था को जिन्होंने बनाया, सारा संसार को जिन्होंने इस्कॉन दान के रूप में दिया, आज उनकी किया हुआ चीज के ऊपर हम कितना आनंद लेते हैं। तो वो कभी मरे? कभी नहीं। हम रोज उनको गुरु पूजा में पुष्पांजलि देते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य बोल के बोलते हैं। तो कीर्ति रजस्य सजीवति, वो जीवित रहता है। जगदानंद पंडित अष्टपाटवंश में एक पाटवंश थे, सत्यभामा नाम था उनका, कृष्ण लीला में, पर गौरांग महाप्रभु की लीला में वो जगदानंद पंडित का रोल निभाया। एक दिन की कथा ऐसे हुई, जगदानंद पंडित का नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे तो उन्होंने ही कहा, मुझे उन्होंने ही कहा, क्षमा प्रार्थी हो। जो भी हो, तिरुभाव तिथि हो या आविर्भाव तिथि हो, हाथी मरे भी लाख रुपया, जीव भी लाख रुपया, है ना। तो भक्त, भक्त की मृत्यु नहीं होती, और भक्त आविर्भाव होते हैं। जैसे साधारण मनुष्य जन्म होता है, ऐसा जन्म भक्तों का भी नहीं होता। और जो जो बड़े वैष्णव सिद्धांत में आते हैं, उन लोग तो लीला में भाग लेने के लिए ठाकुर जी उनको भेजते हैं, आप नीचे आओ और ये लीला में सहायता करो और लीला को प्रचार और प्रसार में लो। इसलिए भक्तों का जीवन है। और भक्त, ऐसा भक्त जब हमें दर्शन दें, गंगा पापम शशि तापम कल्पम दैन तरु तथा, दैन तरु तथा पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागमे। साधु के दर्शन बहुत पवित्र होते हैं। गंगा माता आपकी पाप धो सकती है, धोने में समर्थ है। चंद्रमा दिन के गर्मी को निवारण करने में समर्थ है, और कल्प वृक्ष बांछा बट जो आप कल्पना करो मांगो वो आपको दे देती है, आपके दरिद्रता को दूर करती है। किंतु ये तीनों व्यक्ति एक एक चीज करने में समर्थ है, दो काम एक साथ नहीं कर सकते। किंतु पापम तापम च दैनम च, पाप भी और ताप भी, गर्मी भी और दैन मतलब दरिद्रता भी, ये तीनों को हर लेते हैं जब साधु के दर्शन हो जाए, वो हर जाता है। इसलिए साधु बड़े महान होते हैं। शैले शैले नमाणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्रम चंदनम न बने बने। सभी शैलों में माणिक्य प्राप्त नहीं होते, वैल्यूबल ज्वेलरी। सभी हाथियों के मस्तक में मुक्ता प्राप्त नहीं होता, सभी जंगलों में चंदन के पेड़ नहीं मिलते, और सभी स्थान पर अच्छे साधु नहीं मिलते। इसलिए थोड़ा तपस्या की जरूरत है, हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा सत्य कौन है, असत्य में रह करके सत्य की रूप में अपने को दिखाने वाले कौन है। गीता में भगवान भी प्रहलाद महाराज भी निंदा करते हैं इस श्लोक में, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। जे कर्मेन्द्रियाणि गीता कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान ही विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार शौच्यते। कर्मेंद्रिय मौने बाबा आए, 3 साल बात नहीं किया, मौन में बैठे। लोक जगत में इतना चर्चा हुआ, इतने चर्चे हुए, क्या चर्चा हुआ? अरे बात नहीं करते साधु, कितना महान। अच्छा अब बात नहीं करते, भगवान ने इतना पवित्र मुख दिया, वाणी दिया, वो वाणी को आपने बंद कर दिया। उस प्रभाव से दूसरे के मन में ये प्रभाव दिया, कितना उच्च क्वालिटी के ये संत है, ये मौन हो गया है, बात ही नहीं करते। ठीक है, ये बात पर ध्यान रखना। पर उनको प्यास लगा, उनको कुछ और चाहिए, वो कागज और पेन में लिखना शुरू किया, क्योंकि बंद है वाणी। तो फिर क्या हुआ, हाथ भी तो शरीर का एक अंग है, जो बात मुंह में बोलना चाहिए वो हाथ में बोला और आपको दिया, तो क्यों? तो बोलने में क्या तकलीफ था? पर रिस्ट्रिक्शन कहां है? ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। गौरांग महाप्रभु जो चर्चा में किसी का कल्याण नहीं हो वो चर्चा साधु को नहीं करना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर कंट्रोल ले आओ, अच्छा साधु बन सकते हो। नहीं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, हाथ में लिखेंगे बा इशारा में बोलेंगे एक ग्लास पानी दो मुझे पीने के लिए। पर भगवान ने मुंह दिया, प्रभु एक ग्लास जल दे सकते हो, आराम से बोलो, कोई तकलीफ नहीं। किंतु व्यर्थ की चर्चा जो करोगे, श्रुतवादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यता आत्मतत्त्वं गृहेषु गृह मेधिनाम। हजारों कथा सुनने के लिए होता है सवेरे और शाम तक, पर उसमें कल्याण करने वाली कोई कथा नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए साधु बनो, प्रैक्टिस करो, पर भगवान की बात को तोड़ मोड़ के दूसरे को मत समझा, एज इट इज। जैसे ठाकुर जी ने कहा ऐसे बताओ। पर आजकल के अनेक प्रचारक ऐसे हो चुके हैं जो सत्य को ठीक से नहीं बोलते। एक उदाहरण मेरे, आज जितने ही हमारे कथावाचक है, जितने ही है, श्रीमद् भागवत के जो 28 नरक का वर्णन है उसको विशेष रूप में प्रांजल रूप में पब्लिक को कौन समझाता है? एक का उदाहरण मैं चाहूंगा, आप दो मुझे, वो व्यक्ति समझाता है, क्योंकि उसमें कर्म की बात लिखी है, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे दंड मिलेगा यमराज के पास। उसको कोई सुनना नहीं चाहता, भयभीत कर देता है व्यक्ति को, तो कथाकार कभी नहीं बोलते। आप बताओ, जब ही डॉक्टर रोगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो रोग को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। वही बात ठाकुर जी यहां बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेन्द्रियों को दबा करके मन में विषय की चिंता करना, मिथ्याचार सौ उच्चते, वो ढोंगी है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। हमें ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति गलती करता है और हम सभी भी उसमें पिस जाते हैं, क्योंकि लोग थोड़ी जानते हैं। हमारी भी अमेरिका में एक संत गए इंडिया से, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे, उनका पूरा पूरा को पूरा जो बड़े बड़े लोग हैं, जब उसको इंटरव्यू दिया गया वो बोला आई हैव 90 रॉयल्स रॉयल्स, जो यूके का सबसे बड़ा सबसे कीमती कार है। बोलता है नो आई हैव 90। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, लोगों के ऊपर वो प्रभाव डाला। सब लोगों ने क्या किया, उनको फॉलो किया। फिर बाद में वो उस सिटी का, जिस सिटी में रहता था, वो मेयर बनने के लिए चाहा, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको चारों तरफ से घेर घार के उसको थ्रो आउट किया कंट्री से, ना वो घर का रहा ना घाट का रहा। पर ऐसा क्यों? पर हम लोग जब भी जाते हैं इमिग्रेशन में, वो हमें ट्रीट करते हैं, ये भी उसमें से एक होगा। तो मैं एक कथा सुनाता हूं, भक्त लोग सोच के देखना, ये जो कथा बोलता हूं ये कितना उतरता है आप लोग के दिमाग में। एक संत थे, परंतु बचपन में गांव में रहा करते थे, बचपन में, तो गांव की रीति रिवाज के अनुसार, खान पान के अनुसार, ये शास्त्रिक ढंग से जो साधुओं को भोजन करना चाहिए वो नहीं करते थे। ये मांस मछली कांकड़ी इत्यादि खाता था वो साधु, किंतु सौभाग्य से कभी साधु संघ में आकर के साधु बना, किंतु उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, खाने पीने की जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा।
साधु जी एक दिन प्रचार करने के लिए अपनी गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ता में खेती आया और खेती में थोड़े थोड़े पानी थे और वो खेती में एक कांकड़ चल रहा था, क्रेव चल रहा था। तो उन्होंने इसको देखा तो उनका लोभ आया, अगर इसको बना करके जला करके मसाला मिर्चा दे करके खाए जाए तो बड़ा टेस्टी होता है। तो उन्होंने इधर देखा और उधर देखा, कोई नहीं देखता, कोई है नहीं। तो कंकड़ को उठाया और अपना झूली के अंदर भर दिया। भर करके संत जी चले, एक घंटा चलना पड़ा। दूसरा गांव के एक दुकान आया, संत जी माला को रख के बोले थोड़ा मुंह हाथ धो के मुझे चाय पीना है, थोड़ा गर्म कुछ पिला, मैं थक गया हूं। तो दुकानदार उनको एक चाय दिया पीने के लिए। जब वो पी रहे थे संत जी साधु जी, तो ये माला हिल रहा था, माला को रख दिए ना उधर, माला हिल रहा था। तो ये तो बिल्कुल ध्यान से आउट हो गया। तो दुकानदार पूछता है, बाबा ये माला के अंदर क्या, ये हिलता क्यों है? तो संतोष को याद आ गया, बोले रे अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो फिर मेरा इस संत जीवन का क्या होगा, साधु जीवन का? बोलता के जाने गोविंदर गति झूला को माला भिड़ू छंती। बोलते दुकानदार ये गोविंद की क्या मैं महिमा बताऊं, माला को जप जप के हरे कृष्ण कर करके वो सिद्ध हो गया है माला। मैं हाथ निकाल भी लू फिर वो जपते जाता है, तभी ये माला हिलता है। तो कभी कभी ये पाखंडता संसार को बर्बाद कर देता है। पाखंडता से भक्ति कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ऑनेस्टली मृत्यु हो भी जाए, सत्य बोल के मर जाओ ना, वो सक्सेस ऑफ लाइफ है। हाँ? सत्य सत्य व्रतम सत्य प्रियम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्य निहिता च सत्य सत्यस्य सत्य प्रकाष्ठानितम 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम ऑल डेमिगॉड्स प्रेइंग टू सुप्रीम लॉर्ड। सत्य सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए जगत और संत जीवन। तभी आइए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं। हे भगवान नृसिंह देव, पहले प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान को संबोधित करके ये बात बोलते हैं, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है। संत पुरुष तो मैं देख रहा हूं, संत तो बहुत है, किंतु असली संत कौन है वो बात है। किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। प्रभुपाद जी ने प्राय समय में अपने भक्तों से कहा जे हम भजनानंदी नहीं है। भजनानंदी बहुत है जो अपने लिए जप करते हैं। जपिले श्री कृष्ण नाम अपनी से तरे, जो कृष्ण नाम का जप करता है वो अपने से तर जाता है, अपने को उद्धार करने में समर्थ है। परंतु प्रभुपाद जी ने जो सोसाइटी बनाया इंटरनेशनल सोसाइटी व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, वो केवल भजनानंदी नहीं है, हम गोष्ठानंदी से बिलीव करते हैं। गोष्ठी सभी को लेकर के हम सभी की उद्धार की चिंता करते हैं। पर वही बात को देखो प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान को बोल रहे हैं, बोल रहे प्रभु अपने वो जितने ही संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं खंभों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय का वन में चले जाते हैं। हिमालय में रहु गणे तत्तपसा नो याति
नौचया निर्वापणाद गृहादवा न छंदसा नैव जड़ाग्नि सूर्यजय बिना महत पाद रजो अभिषेकम। अनोखा श्लोक श्रीमद् भागवत का। जब तक रहुगण राजा को समझाते हुए भगवान हमारा भक्त भरत महाराज कहते हैं, रहु राजा रहुगणी तत्तपसा, ये भक्ति तपस्या का फल नहीं है, तपस्या करके भी भक्ति तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वापणात गृहा दबा, गृहस्थ के जितने धर्म उसको पालन करो वा निर्वाण पद को ले लो, संन्यास लेके दंड लेके घुरो, फिर भी ये भक्ति को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। निर्वापणाद गुरुवादवा न छंदसा नैव जड़ाग्नि सूर्जे, छंदसा मना वेद का, सारा वेद को पाठ कर लो फिर भी ये प्राप्त नहीं होता। अग्नि में शरीर को जला भी लो, बड़े बड़े तपस्या ऐसे होते थे, सर को काट काट के अग्नि में जलाना, अग्नि कुंड में खड़े होकर के जल जाना इत्यादि इत्यादि। हाँ, और हिमालय की ऊपर एक चोटी में एक पैर में सूर्य की ताप को लेके तपस्या करना, इससे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती राजा रहुगण। तो पर भक्ति आती की है ना, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। महत्पाद दोनों का है, एक भक्त का है और एक गोविंद का है। महत्पाद जो भगवान के चरण में शरण ले लिया उसको भी महत्पाद, उसकी चरण भी पवित्र हो जाता है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से। और अभय पद तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का है, चतुर्दश ब्रह्मांड उसके शरण में है। तो बिना महत्पाद, यहां पर महत्पाद शब्द का अर्थ है भक्त, शुद्ध भक्त, जैसे हमारा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, बड़े पवित्र भक्त हैं। ऐसे भक्तों की चरण रज से अर्थात चरण की धूर से जब तक रहु राजा, व्यक्ति वो धूर से अपने को स्नान नहीं करा ले तब तक ये भक्ति उदय नहीं हो सकती। भक्ति निर्भीक है, भक्ति किसी से भयभीत नहीं होता है, भय की प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपन्न संस्कृति में घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत वेद्धि भेति स्वयं भयम्। अनोखा श्लोक अगेन। डरा हुआ व्यक्ति हाथ और पैर को बांध करके समुद्र में फेंक दो, बड़े बड़े उर्मी मालाएं, ढेव जब आता है व्यक्ति डूबता है और उड़ता है ऊपर, जब नाक थोड़ा निश्वास के लिए तरस जाए त्राहिमां कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण मात्र से बंधन टूट जाता है। और क्यों ना, जो डर है जो भय है वो भय भी हरि नाम से डर जाता है, हरि नाम से डर डरता है। डर का अर्थ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फियर, अदृश्यम भयम कारणम द कॉज ऑफ द फियर, अदृश्य जो हम देख नहीं पाते, ये पानी के अंदर कुंभीर है, क्रोकोडाइल है, सांप है, हम तो देख नहीं पाते, ए नहीं नहीं मजा मजा उड़ जा, हम दौड़ के भाग जाते हैं, पर हमको मालूम पड़े इसके अंदर कुछ नहीं है, हम जानते हैं, तो फिर डर काहेगा। उजागर है भयम नास्ति, जब हम उजागर है आंखें खुली है सोए नहीं है फिर डर काहेगा, डर तो तभी होता है जिसका परिणाम हम नहीं जानते, वहां डर लगता है, कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कुछ कर लेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, हिमालय में चले जाते हैं, वे दूसरों को मुक्ति में रुचि नहीं रखते। दूसरे लोग को ठाकुर जी के पास जाए, भक्ति में आए, थोड़ा प्रसाद पाए, कुसंग से दूर रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं, हमारा उद्धार हो जाए, उसके लिए वो सदैव सजाग रहते हैं, पर दूसरों के लिए नहीं। अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता, बट कौन न मैं इन विचारों से मूर्खों तथा ध्रुतों को छोड़कर, प्रहलाद जी कह रहे हैं ठाकुर जी ये मूर्ख और ध्रुत को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। क्योंकि ठाकुर जी बोले तुम मेरे साथ चलो, प्रहलाद जी बोलते मैं अभी नहीं जा सकता ठाकुर जी, अनेक कुछ बाकी है, मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सारा संसार आज दुखी है, जब भी साधु संतों के सामने प्रणाम करते बोलते आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा घर में क्लेश है, मेरा बेटी ये कर रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा पति ये कर रहा है, कोई बोलता है मेरा पत्नी ये कर रही है, कृपा कीजिए थोड़ा सुखी तो रहो, शांति मिले, ठाकुर स्वामी जी थोड़ा शांति दीजिए, सुखी हो जाऊं, बहुत दुखी हो गया जब से। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषण मृगधरं, वंदे पशुनांगपतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्नी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिव शंकरम शिव शंकर रुद्रेश नीलकंठ त्रिलोचनम सर्वानीश हर 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 महादेव। बिल्लो पत्र चढ़ाया, जितने कुमारी कन्याएं हैं हमारे भारतवर्ष में, किसी से भी पूछो भगवान अच्छा वर देते हैं, भगवान शिव को पूजा करो तो शिव बड़े प्रसन्न होकर के अच्छा पति देते हैं। अब पूजा किया, सारा जीवन उनको उनकी पूजा में बिताया, अच्छा पति मिले तो पति भी मिला। कुछ दिन गया, दो पूंछ भी जन्म हुए, संतान संतति भी हुए, फिर पति के साथ झगड़ा शुरू हुआ। किस लिए झगड़ा शुरू हुआ ना, पति थोड़ा पीने लगे सड़ा पानी, थोड़ा पीने लगे, जब पीने लगे होशते नहीं है, बात बात में गंदी गाली देना और थप्पड़ मारना। पतिदेव ने शुरू किया, अपना पतिपन दिखाया, तो फिर क्या हुआ, हाय डार्लिंग विदाउट यू आई कांट लिव वन सेकेंड, पर वो जाके पहुंचा ये और ऑनर दिस पर्सन इज नॉट गुड वन, बट आई आस्क गिव मी गुड पति टू लॉर्ड शिव, बट ही द मर्डरर, ही द दिस दैट, आई डोंट वॉन्ट लिव विथ हिम। तो क्या हुआ, भगवान शिव को तो हमने पुकारा था अच्छा पति दो, हे भगवान, फिर मंदिर में जाके सर पीट के क्या बोलती है, वो बोलते ठाकुर जी मैंने तो मांगा था शिव तुम्हारे जैसे एक पति दो, पर इससे तो अच्छा है कि सब देता मुझे, ये पति क्यों दिया। इसलिए मांगते तो हम लाखों, पर जब वर प्राप्ति होता है हमारे पास तो कैपेसिटी होना चाहिए ना उसको टेकने के लिए, संभालने के लिए। हमारा कैपेसिटी है 5 किलो वजन का, पर हम 15 किलो वजन अगर सर में ले ले उसका गति क्या होगा। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर के कुछ मत मांगो, क्यों, पिता अहम स जगतो, माता धाता पितामह वैद्य अहम पवित्रोमकार रुक श्याम यजुरे वचः। मैं ये संसार का पिता हूं, मैं ये संसार की माता हूं, मैं ये संसार को रक्षा करने वाले पिता का पुरुष हूं। तो भगवान तो जानते हैं, वो तो हृदय के स्वामी है, अंतर्यामी है, उनसे मांगना क्यों। हां, भगवान से मांगना कोई पाप नहीं है। अगर बच्चा अपनी मां और पापा से कुछ मांगे उसको पाप नहीं कहते, पर ये उच्ची भक्ति नहीं कहलाता। मांगना निम्न स्तर की भक्त है, भक्ति है। तो मांगो, क्यों नहीं मांगना, क्योंकि पापा और मामी वो पहले से जानते मेरे बच्चे को क्या चाहिए। सर्दी में एक कोट चाहिए, वो पहले खरीद कर, मेरा बच्चे को सर्दी लगेगा, बच्चा रो पड़ता है, माँ दौड़ती है, मेरा बच्चे को भूख लगा होगा, कुछ खिलाती है। कि तो मांग करके छोटा क्यों बने। अगर हम अभी हमारे मोदी के पास जाके बोले मोदी जी एक रुपया दान दे दो, ये मोदी का अपमान नहीं है, बोलो ये मोदी का अपमान नहीं है। अरे जो लाखों रुपया डोनेशन दे सकता है वो एक रुपया में क्यों हम उसको मांगे। तो इसलिए मांगो ना ठाकुर जी के पास, जब जाओ जब प्रणाम करो, एक प्रणाम अगर ठाकुर जी करोगे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाभारत में पितामह भीष्म वर्णन करते हैं, एक नापी एक प्रणाम भगवान के सामने कोई करे, भगवान उस जीव को 10 अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद जो फल होता है वो फल वो जीव को प्राप्त हो जाता है एक प्रणाम में। तो उस व्यक्ति को इसलिए कर्णामृत पुस्तक में बिल्लो मंगल ठाकुर जी लिखते हैं, कैवल्यम नरकायते। कैवल्य कहते मुक्ति को। हम जगन्नाथ पीठ की जो जगन्नाथ की जो कैवल्य प्रसाद है ना, वो प्रसाद कहते कैवल्य, अर्थात वो प्रसाद जीवा में जाते ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति के लिए तपस्या करना नहीं पड़ता, इसलिए क्या है ना, निर्मल्य प्रसाद है, कैवल्य प्रसाद है। उस कैवल्य को उस भक्त ने कहा कैवल्यम नरकायते। ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो बोलते हमें कैवल्य की इच्छा नहीं है। प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान ने बोलते चलो मेरे साथ, मैं हूं अभी, बोलते अभी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त वो नरक में भी आनंद ले सकता है और स्वर्ग में भी उसको बैठा दिया जाए वो भी आनंद ले सकता, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। एक बार की कथा पद्म पुराण में, हमारे महाजन हुए जनक महाराज, जनक महाराज माता सीता के जो पिताजी हैं रामायण के अनुसार, वो कहे नरक देखने के लिए। नरक की व्याख्या क्या है, नौ अर्क, नरक जहां पर अर्क मतलब भगवान सूर्य का रश्मि ना हो वो स्थान नरक का है, अर्थात अंधारा है। तो बोले नरक में जीने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं मैं देखूं, क्योंकि वैष्णव पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख के लिए जीता है, अपने लिए कभी नहीं जीता वैष्णव, जैसे प्रहलाद महाराज अभी कह रहे हैं पर दुखे दुखी। जाके देखे, जब जनक महाराज नरक के अंदर जा रहे थे तो नरक में रहने वाले जो व्यक्ति हैं दंड पा रहे थे, उनके शरीर में एक ठंडी हवा लगा, वो जल रहे थे ना, गर्मी में तप रहे थे। बोले कौन संत आया हमारे जीवन को शीतलता प्रदान किया। देखे तो जनक महाराज आ रहे, जनक महाराज देख रहे हैं। यमराज को जनक महाराज बोलते हैं इनको इससे मुक्ति देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं जो इससे मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा आपकी सुकृति, आपकी सुकृति। तो जनक महाराज ने अपनी जितनी पुण्य कर्म थे अनेक उन्होंने उनको प्रदान कर दिया। एक पल भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, और सभी को आनंद में भर दिया। वैष्णव ओ है, भक्त ओ है। आलोक बितरे सलीता जथा निज को जाली परहित पाई जलद दिए निज को ढाली परहित पाई पादप जथा छाया भीतरे बड़ी दिए प्राण महत्व तथा परहितरे। दिया को देखे हो ना आप सभी, दिया दिया का धर्म क्या है? वो जलती है पर दूसरे को प्रकाश प्रदान करता है। ऐसे ही वैष्णव वो है, अपने को बेशक मुझे कष्ट मिले तुम सुखी रहो, ये विचार में होना चाहिए। जैसे दिया जल करके अन्य को प्रकाश देता है, ऐसे ही कष्ट भी हो जाए, सेवा कष्ट से होता है। बिना कष्ट से कोई किसी का सेवा नहीं कर सकता। सेवक और आज्ञाकारी भक्त का अंतर है। हमने आज्ञा दिया मुझे पानी चाहिए, आपने पानी दिया, वो आज्ञा का पालन हुआ। किंतु मुझे प्यास लगा, आप पहले ही समझ करके ग्लास लिया या पानी, वो सेवा है। सेवक उसको कहते हैं, सेवा साधारण बात नहीं है। तो आलोको भीतरे सलिता जथा निज को जाड़ी, अपने को जला करके दूसरे को लाइट देता है। परोहित पाई जलद, जलद कहते बादल को, वर्षा को। वर्षा का अपना उपकार किया है, जब वो बरस जाता है अपना उपकार तो है नहीं, वो केवल दूसरों के हित के लिए बरसता है, दूसरों के कल्याण करने के लिए वो बरसाता है। पादप कहते हैं पेड़ को। पेड़ क्या करता है? सूर्य की रश्मि की जो गर्मी है उसको अपने सर पर लेकर के छाया भीतर देता है नीचे, और पथिक उसमें सो जाता है। ट्रैवलर चलते चलते जब थक जाता है वो पेड़ के नीचे सोता है। पेड़ में जो फल फलता है वो पेड़ एक भी खाता है? नहीं खाता, सबके लिए छोड़ता है। जो महत्व व्यक्ति है, वैष्णव है, भक्त है, साधु है, संत है, वो क्या करता है ना, अपना प्राण भी विसर्जन कर देता है जगत के कल्याण के लिए। कौन ऋषि थे जिन्होंने समस्त हड्डियों को राजा इंद्र को, दधीचि मुनि दधीचि, दान दिया, लो देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। कौन भक्त मेरे एक होंगे ये समस्त शरीर से हड्डी को निकाल के बोलो लो अस्त्र करो, उसी को त्याग कहते हैं। अपना चिंता किसी को नहीं। इसलिए कोकिलानंग स्वर रूपम स्त्रीणांग रूपम पतिव्रताम विद्या रूपम कुरूपाणांग क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी वही है कितना क्षमाशील है। कलियुग के प्राणी गलती से भरा है, गलती होगा। हमें अथॉरिटी से निवेदन है, छोटे भक्त कभी गलती कर बैठे, एक एक सा धक्का दे के मत निकाल दो मंदिर से, कहां जाएगा ये संसार? बहुत बुराई में भरा है। जब भक्त आ गया है थोड़ा संभाल लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जैसे मां के ऊपर बच्चा टट भी कर देता है, दुर्गंध से मां का शरीर भर जाता है, फिर भी मां बच्चे को सफाई करके, साबुन से धो करके, पाउडर लगा करके जब पिता घर में आते हैं उनके हाथ में छोड़ देती है। पिता को लगता है मेरा बेटा कितना सुंदर है। ऐसे ही अथॉरिटी भी वो है जो पिता और माता जैसे अपनी बच्चे, पुत्र जैसे अपने भक्तों को पाले। श्रील प्रभुपाद एक बार कालकाटा मंदिर में पहुंचे, एक भक्त सो रहा था सर्दी में और वो पतला सा चादर लिया होगा, हाथ को ऐसे करके पैर को ऐसे करके सो रहा है। प्रभुपाद देखे, प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट को बुलाया, बोले देखो, बोले why this devotee sleeping like this, you are in charge, provide him, he should sleep comfortably। हम क्यों नहीं सोचे इसे? अगर कोई ऐसा स्नेह हमें दिए, मंदिर छोड़ के एक दिन भी एक पग कोई नहीं रखेगा बाहर, सारा संसार प्रेम ढूंढता है। प्रेम हम पांच व्यक्ति से प्रेम बांट नहीं सकते, संसार को कैसे बांटेंगे? कहने के लिए हो सकता है पर ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। वैष्णव रस से भरा होना चाहिए, वैष्णव की दर्शन मात्रेण कृष्ण स्मरण हो जाना चाहिए, उच्चारण हो जाना चाहिए। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, कृष्ण नाम होते हवे संसार मोचन। ये भगवान कृष्ण के नाम ही हमें संसार से ऊपर उठा सकता है। शुद्ध गुरु का शरण, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, बाबा वंदन से मुक्ति और ब्रजेंद्र नंदन के चरणों में समाप्ति। हरे कृष्ण। जाने अनजाने में आप भक्तों के चरणों कमल में काय मन और वाक्य से यदि कोई त्रुटि हो गया हो, छोटा समझ कर क्षमा देना। हरे कृष्ण।